कृष्णाय कृष्ण भक्ताय
तद भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सो श्रीमान विष्णु भक्त और विष्णु नाम प्रभु जी के निवास स्थान पे उनके पिताजी के जन्मदिन के दिन आज जन्मदिन है उनको ऐसे शुभ अवसर पर हरि नाम सत्संग और कीर्तन में आप सबका स्वागत है। और महीना ये कार्तिक मास दामोदर मास भगवान प्रेम से बंध जाते हैं, वो तो भक्त के प्रेम से बंध जाते हैं। अब भगवान प्रेम से बंध गए तो हमको भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो भगवान को कौन सा भक्त बहुत प्रिय है जिससे प्रेम से वो बनते हैं? नवंबर के महीने में वो भक्त तैयारी करता है और दिसंबर में वो अपने कितना भगवान से प्रेम करता है उसका परिचय देता है। हरे कृष्णा। तो ये महीने आपस में ऐसे जुड़े हुए हैं। तो एक श्लोक, वैसे आपका जीवन में लक्ष्य क्या है? आप क्या चाहते हैं जीवन में? चलो मैं से ही प्रश्न में आपसे पूछ लूं, क्या आपका इच्छा है? हाँ जी, आपको क्या चाहते हैं आखिर इस दुनिया में? आपका क्या जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ जी, क्या चाहते हैं, क्या चाहिए दुनिया में? क्या चाह रहे हैं? क्या आपका उद्देश्य क्या है जीवन का? हाँ जी, कुछ तो बोलो। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण से प्रेम हो जाए, हम कृष्ण से प्रेम करते हैं, कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं, ये कैसे पता लगे? वैसे दुनिया में बहुत से लोग हैं वो एक तरफा प्रेम होता है, लेकिन सामने भगवान करता है कि नहीं करता उसका कैसे पता लगे? हमारा उद्देश्य जीवन का कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, बहुत अच्छा है। इसलिए एक सिद्धांत जैसे अभी चल रहा है, भाई प्रभुपाद से सीधा दीक्षा ले लेते हैं ऋत्विक में, ये एक सिद्धांत है। तो दीक्षा लेने का नियम ये है कि आप गुरु को स्वीकार करो, गुरु भी आपको स्वीकार तो करेंगे, मैं आपको स्वीकार करता हूँ। तो अब प्रभुपद कैसे आपको स्वीकार के पता कैसे लगा स्वीकार किया कि नहीं किया, बहुत बड़ी त्रुटि हो गई ना सिद्धांत में। भाई आप कहो कि मैंने प्रभुपाद को गुरु, लेकिन प्रभुपाद भी कहे ना मेरा आप शिष्य हो, वो कैसे कहेंगे, नहीं कह सकते ना। ऐसे ही हम कहते हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन भगवान भी कहे ना मैं मेरा प्रिय भक्त है ये, वो कैसे हो। पहले तो लोग भगवान से प्रेम करना चाहते हैं वो भी नहीं है, लोग तो संसार में अपने इच्छाओं की पूर्ति के भाग दौड़ में लगे हुए हैं। भगवान से प्रेम करने वाले कम से कम प्रभुपाद जी की कृपा से इतना तो हमें मालूम हुआ है कि मानव जन्म में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, इतना पता तो लगा है। अब उसका प्रयास करने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको सबको मालूम होगा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने के लिए पहले श्रद्धा चाहिए। उस श्रद्धा के कारण हमारे को भक्तों का संग मिलता है, और भक्तों के संग से हमारे को भगवान का नाम जपने के लिए प्रेरणा मिलती है। और जैसे हम भगवान का नाम जपते हैं, गुरुजनों का आश्रय लेते हैं, तो हृदय में जो अनर्थ हैं वो आस्ते आस्ते कम होने लगते हैं। तब हमारे वही निष्ठा हो जाती है कि ये कृष्ण भक्ति हमारे जीवन का सर्व उत्तम साधन है, और वो जो निष्ठा पक्की हो जाएगी तो फिर हमारे को उसमें थोड़ा रुचि, थोड़ा उसमें मिठास आने लगेगा। वो रुचि का स्तर का मतलब ये कि हम कहेंगे अभी तक हमने जीवन बेकार गंवा दिया, क्या किया, हमको ऐसे नहीं करना था, ये काम हमने क्यों छोड़ दिया कथा कीर्तन का। तो निष्ठा के बाद ये मन में ग्लानी होती है कि इतना समय हमारा कैसे बीत गया, ऐसे जिंदगी आधी चली गई बेकार भगवान की भक्ति के। ये निष्ठा के बाद ये जब संकल्प हो जाए तब भगवत नाम में रुचि आने लगती है, उसके बाद आसक्ति होती है जिसके बगैर रह नहीं सकते। जैसे व्यसनी होता है ना, व्यसन के बगैर रह नहीं सकता है, ऐसे भगवान का भक्त भगवान की कथा कीर्तन के बगैर रह नहीं सकता है। और वहां तक जाने के बाद भाव कहीं बाहर से लाना नहीं है, हम सबके हृदय में पड़ा है। जैसे बच्चे में चलने की सामर्थ्य तो जन्म से होती है, हमको केवल उंगली पकड़ के चलाने का अभ्यास कराना है तब वो चल जाएगा। ऐसे हमारे अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भाव का तो भरा हुआ है, केवल अभ्यास करने से भक्ति का वो अपने आप जागृत हो जाए, वो कहीं बाहर से लाना नहीं है। अब बच्चा कुछ भी करो उड़ नहीं सकता है, पक्षी का बच्चा उड़ जाएगा, आदमी का बच्चा नहीं बढ़ेगा कुछ भी करो, क्योंकि उसके अंदर है ही नहीं, वो जो नहीं है वो कैसे करेगा, चलना तो उसके अंदर पहले से है ही। ऐसे हमारे अंदर कृष्ण प्रेम पहले से पड़ा है, बस उसको जागृत करके भाव तक हमको पहुंचना है, तब कृष्ण। असल में हमारी भक्ति का उद्देश्य है भाव का उदय करना। हम जो अभ्यास कर रहे हैं भक्ति का, इसका उद्देश्य है हमारे अंदर भाव का प्रकट्य हो जाए, उद्देश्य वो जागृत हो जाए, पड़ा अंदर पहले से है, वो बीज रूप में वो जागृत हो जाए। तो भक्ति के साधन जो है, कलयुग के अंदर भक्ति के मुख्य साधन को श्री चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन कहा है। संकीर्तन सबसे सबल साधन है, तमाम बलवान साधन है, बल से। और संकीर्तन के श्रील प्रभुपाद ने दो विभाग किए हैं। एक विभाग श्रील प्रभुपाद कहते संकीर्तन हरिनाम संकीर्तन, और दूसरे संकीर्तन का नाम भक्ति सिद्धांत सरस्वती के चरण चिन्हों के ऊपर चलते हुए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं मृद मृदंग है भगवान के पुस्तकों का वितरण। ये दो संकीर्तन के भी आते हैं। संकीर्तन के दो विभाग है, एक नाम संकीर्तन, एक भगवत वाणी का पुस्तक के रूप में हम जो कीर्तन करते हैं एक घंटा आधा घंटा कान में पड़ता है फिर भूल जाएगा, हम प्रवचन करते हैं लोगों को भूल जाएंगे, लेकिन जो भगवत वाणी वो भी किसी शुद्ध भक्त के मन से प्रकट हृदय में प्रकट हुई, जैसे भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी उसके ऊपर श्रील प्रभुपाद के हृदय से प्रकट किए हुए उनकी भावार्थ, ये भगवान और भक्त किसी भाग्यशाली के पास पहुंच जाए तो उसका जीवन बदल जाएगा। तो संकीर्तन का दो विभाग है, हरिनाम संकीर्तन, और जितना भी आरंभिक कृष्ण भावना अमृत संघ के आरंभिक दिनों में संकीर्तन दो प्रकार से साथ साथ चलता था। 10 भक्त भी, 5 भक्त बाहर जाते थे तो 3 कीर्तन करते थे और 2 दोनों साइड में पुस्तक भी था। ये रोज का काम था, प्रतिदिन का, ये रेगुलर सर्विस थी। रोज का ही दोनों काम, संकीर्तन दोनों साथ चलते थे। दूसरे शिला प्रभुपाद जी के उद्देश्य में है मंदिर की स्थापना करके अच्छी तरह से अर्चा विग्रह का साधन भजन से पूजन होना चाहिए ताकि लोग आकर्षित होकर मंदिर में आएंगे तो भगवान से उनका परिचय होगा। और उसके साथ तीसरा है लोगों को भगवान की भक्ति में जोड़ना, दीक्षा शिक्षा के मार्ग से, इसको जिसको हम आजकल कांग्रीगेशन कहते हैं, भक्त समाज का। और चौथा श्री प्रभुपाद का जो उद्देश्य था वो था कि हर हमारा मंदिर अपने आप में स्वावलंबित हो, उसके पास अपना गाय हो, अपना जमीन हो, अपना सारा उत्पादन हो, हमको किसी से कहीं मांगने की आवश्यकता न पड़े, हमारी अपनी। तो ये 3 काम तो बहुत अच्छी तरह से कृष्ण भावना अमृत संघ में हम कर पाए हैं। हरिनाम संकीर्तन पुस्तक वितरण का कार्य तो बड़े जोर शोर से पूरे विश्व में होता ही है। मंदिर बड़े भव्य स्थापित हो गए, कांग्रीगेशन भी बहुत हो गई, लेकिन अभी तक हम चौथे काम में उतना सफल नहीं हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई से लेकर गुरुकुल पद्धति से और अपना अन्न पैदा करके और अपना आवश्यक जीवन की चीज़ों को स्वयं पैदा करें, वो अभी तक हम कर नहीं पाए। और ये सब तब संभव है जब भगवान प्रसन्न हो जाए, और भगवान की प्रसन्नता तो भगवान के भक्तों की प्रसन्नता से होती है। उदाहरण देते हैं, किसी गर्भवती स्त्री के उदर में बच्चा है, बच्चा दिखता तो नहीं है, लेकिन बच्चे को आपको पुष्टि करनी है, बच्चे को कुछ देना है, तो माँ को खिलाने से बच्चा अपने आप पुष्ट हो जाता है। ऐसे भगवान किसी को दिखता नहीं है, लेकिन जो भगवान का प्यारा भक्त जिसके हृदय में भगवान प्रकट है, उस भक्त को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न हो जाते। तो श्रील प्रभुपाद जी एक संस्था के संस्थापक आचार्य हैं और उन्होंने अपने जीवन में ये मुख्य एक ध्येय रखा था, उद्देश्य रखा था, लक्ष्य रखा था कि मेरे गुरुजी ने मुझे एक संदेश दिया था कि जब भी आपके पास धन हो तो पुस्तक छापना और इसका वितरण करना। और प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देशों में प्रचार और पुस्तक वितरण, ये 2 चीज़ों को प्रभुपाद जी ने बहुत जीवन का अपना ध्येय ये गुरु के शब्दों को बना लिया। तो प्रभुपाद जी के बहुत सारे और भी भावनाएं थी, लेकिन उन सारी भावनाओं में से पुस्तक वितरण का जो उनका मन का एक संकल्प जो भाव था, उस भाव को प्रभुपाद के कुछ शिष्यों ने बहुत अच्छी तरह से सार्थक रूप से अपना लिया है। उनमें एक परम पूज्य गोपाल श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज पुस्तक वितरण के कार्य को अपने गुरु जी की श्री प्रभुपाद जी की प्रसन्नता का मुख्य मंत्र स्थापित करने के साथ लक्ष्य रखते हैं। ऐसे वैसा सिक्की प्रभु जी अमेरिका में देखते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य पुस्तक वितरण करना, पुस्तक वितरण, पुस्तक वितरण, पुस्तक वितरण, उनका सारा इसी के ऊपर जो है उसकी प्रभुपाद की बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन किसी भक्त ने कोई एक विशेष चीज़ को अपना जीवन का जो है लक्ष्य बना रखा है। तो ये संकीर्तन में बात हम ये कर रहे थे, भगवान को प्रेम करना ये हमारा लक्ष्य है कि भगवान हमसे प्रेम करे, ऐसा क्या काम करे। तो ये श्लोक भगवद गीता हमेशा आप पढ़ते आ रहे हैं, ये श्लोक आज फिर पढ़ लीजिए। ये श्लोक 18वें अध्याय में सब गुह्यतम ज्ञान भगवान ने दे दिया। कौन सा गुह्यतम ज्ञान दिया? मनमना भाव कह दिया, सर्वधर्मान परिचय कह दिया। ये दोनों श्लोक कहने के बाद फिर कहते हैं, यदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यते, जो मेरे इस परम गुह्य भगवत गीता के की शिक्षा को भक्तों तक पहुंचाने का अभ्यास करेगा, प्रयास करेगा, संकल्प करेगा, भक्ति मई प्राम कृत्वा, मेरी भक्ति उसको इस कार्य से प्राप्त होगी, पराभक्ति प्राप्त होगी, पराम भक्ति। पराभक्ति का मतलब तीनों गुणों से परे भक्ति, शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति प्राप्त होगी। मामेवैष्य असंशय, और मेरे को प्राप्त होगा इसमें कोई संशय नहीं है। तो सबसे मुख्य भगवत गीता के अंतिम श्लोक कहने के बाद भगवान ने यह कह दिया कि जो मेरा शरणागत है उसको करना क्या चाहिए। बोला मेरी इस शिक्षा को भक्तों तक पहुंचाने से पराभक्ति प्राप्त होगी। और फिर ये जो घोषणा की है, ये श्लोक का उच्चारण करते हैं, न चतस्मान मनुष्येषु कश्चन मे प्रियकृतम भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रतरो प्रियतरो भुवि। ये 69 है, 66 है सर्वधर्मान, 67 है भक्तों में, और 69 ये न च तस्मान मनुष्येषु, मनुष्यों में। पहले तो मनुष्य बहुत कम है धरती के ऊपर, दो पांव वाले जानवर ज्यादा है, मनुष्य बहुत कम है। एक तो मनु समृद्धि के मार्ग पे चले वो मनुष्य, एक जो मनु महाराज जिसको ये भगवत गीता भगवान ने दी, मनु को दी ना पहले, हाँ विवस्वत मनु को दी ना, तो मनु भगवत गीता के मार्ग का है, जो इसको ऊपर चले वो मनु मानव। ये मानवता की, ये नीचे आना चाहिए थोड़ा सीधा, इसने ये तो ठीक है। हरे कृष्ण, नहीं नहीं इसको इसको थोड़ा इसका वजन को ठीक करना बस। तो मानव, वैसे चेतना महाप्रभु जब श्री रूप गोस्वामी पाद को कहते हैं पृथ्वी के ऊपर जीव तो बहुत है, लेकिन आधे तो बेचारे अचर हैं, चल भी नहीं सकते, पेड़ हैं पौधे हैं कहाँ चलते हैं। जो चलते हैं आधे, उसमें से भी आकाश में उड़ने वाले, जल में रहने वाले, और धरती के ऊपर पशु पक्षी ज्यादा हैं। और उन पर धरती के ऊपर चलने वाले में सबसे अल्प मानव है। और फिर महाप्रभु, जो मानव अल्प है उसमें आधे तो नास्तिक हैं, वो तो भगवान को मानते ही नहीं, और जो आधे मानते हैं वो भी कर्म को ही सब कुछ मानते हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूं। और फिर क्या, ऐसे कर्मी जो हैं, कोटि कर्मी मध्य कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ, ऐसे करोड़ों कर्मियों में कोई एक होता है जो कहता है नहीं नहीं ये काम करके यही सब छोड़ के जाना है, इसलिए भगवान को जानना चाहिए, ऐसा ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त, ऐसे ज्ञानियों में करोड़ों में से कोई एक है जो मुक्ति के रास्ते पे चलता है। और फिर महाप्रभु कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त, ऐसे करोड़ों मुक्त हैं उनमें से एक कृष्ण भक्त दुर्लभ है। अब श्री प्रभुपाद ने कितने कृष्ण भक्त विश्व में बनाने का ये अभियान चला दिया है, कितना दुर्लभ कार्य है जो आप कर रहे हो। तो ये मनुष्यों में बहुत दुर्लभ मनुष्य होते हैं जो कृष्ण भक्ति के मार्ग में चलते हैं, असल में वही मनुष्य कहलाने के अधिकारी। बाकी सबको तो महाप्रभु ने पहले बाहर निकाल दिया कि ये तो है ही नहीं इस मार्ग के। और उसके बाद ये श्लोक आता है जो प्रसिद्ध है, ब्रह्मांड भ्रमित कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद ए पाए भक्ति लता बीज। प्रसाद की मतलब है कृपा, कृष्ण की कृपा होती है तब गुरुजनों का संग मिलता है, और गुरु की शिक्षा होती है तो कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। यश्च प्रसादा भगवत प्रसादो यश्च प्रसादान गति कुटो, भगवान की प्रसन्नता तो केवल भगवान के प्रिय भक्तों की प्रशंसा से होती है। तो भगवान के भक्तों की प्रशंसा, तो मानव जो है न तस्मान मनुष्येषु कश्चन में प्रियतकृतम, प्रिय कृततम, कृततम कृतत कृतर कृततम, ये तीन स्टेज है। न च तस्मात मनुष्येषु, ऐसा मानव जो मेरे इस भगवत गीता की शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाता है, इससे बढ़कर ओकोर कोई मुझे प्रिय नहीं। अब भगवान अपने आप किसको अपना प्यारा मानते हैं उसका घोषणा कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। कि मुझे कौन प्रिय है, मतलब एक निमंत्रण देते हैं, अगर मुझे प्रिय बनना चाहते हो तो मेरी इस शिक्षा को आप जन जन तक और कन कन तक, ये चेत, ये है नारद ऋषि का वचन। नारद ऋषि ने भक्ति महारानी को वचन दिया था कि मैं जन जन तक और कन कन तक, कन के कान कान तक और एक एक आदमी तक भक्ति महारानी में आपको पहुंचाऊंगा। तो हम नारद की परंपरा में एक एक आदमी के पास भगवद गीता पहुंचनी चाहिए और हर एक के कान में कृष्ण का नाम पहुंचना चाहिए। ये नारद की परंपरा है। तो अभी तो बहुत से लोग, बहुत से आदमी होंगे अभी अहमदाबाद और उनके चारों ओर जहां तक ये चीज में पहुंची नहीं होगी, वैसा सी प्रभु कहते अभी भारत, भारत में तो प्रचार करने के लिए आप कहो किसी को गीता, बोलता ये तो हमारे घर में पड़ी है, हमारी दादी के पास है, हमारी नानी के पास है, हमारे पास पड़ी है, तो इसलिए उनको ये नहीं कहना है, उनको सीधा कहो कि आपके तो दादी नानी मामा के घर में गीता है तो बहुत पढ़ी हो। बोलते पहले कहो ही उसको कि ये तो आपके पास परंपरा से आ ही रही है, ये तो आपका बड़ा धन है, आप तो भाग्यशाली हो कि आपके घर में है, अब ये आप दूसरों तक पहुंचाए। ये काम जो अब हम कर रहे हैं ना, ये आपको करना चाहिए, ले जाओ चार पांच और को दे दे, आप हमसे ज्यादा जानते हो, वो कहते हैं क्योंकि वो विदेशी ना होगी तो आप तो भारतीय, आप हमसे ज्यादा ही जानते हैं, हम इतना थोड़ी जानते हैं, आपके परंपरा का है, इसलिए आप ये पांच ले लीजिए, पांच लोगों तक पहुंचा दीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके बड़ों ने भगवद गीता घर में क्यों रखी थी। तो जैसे जैसा वातावरण है उस हिसाब से उनसे बात करनी चाहिए। क्या इसकी कोई इसकी कीमत है? अरे भाई भगवान की वाणी की कोई कीमत थोड़ी होती है, आप ले जाइए, आपका है। अब दूसरों को हमें दूसरों तक पहुंचानी है छापने के लिए, जो आपकी इच्छा है वो आप इसका भेंट दे दीजिए, इसका कोई कीमत नहीं हो सकती, लिखा भी नहीं हमने कुछ कीमत इसका, क्योंकि भगवान की वाणी या भगवान, एक बार विष्णुजन स्वामी, ये पहली राधा दामोदर, ये दामोदर महीना है ना, राधा दामोदर संकीर्तन के अधिक भगवान है। जैसे हम मानते हैं कि राधा मदन मोहन संबंध के विग्रह हैं, राधा गोविंद देव दी भक्ति देने वाले अभिदेव के विग्रह हैं, राधा गोपीनाथ प्रियोजन के विग्रह हैं, ऐसे राधा दामोदर संकीर्तन के विग्रह, ये बहुत सुंदर ठाकुर राधा कृष्ण था जो बस के अंदर लेके अमेरिका में संकीर्तन शुरू किया विष्णुजन स्वामी और उनके सारे संगी साथियों ने, उस समय कीर्तनानंद महाराज, विष्णुजन महाराज, उन ठाकुर जी हिलते थे, बस चलती थी ना, तो प्रभुपाद से पूछा कि ये रस्सी से बांधते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठाकुर जी हिलते हैं, तो प्रभुपाद जी ने कहा, क्या बात है, ये तो नाटी, हमारा ठाकुर पहले से ही बहुत शरारती है, यशोदा मैया भी इसको बांधती थी, इसका नाम दामोदर, तो आज तक कहीं राधा कृष्ण बस के अंदर ट्रेवल करें ऐसा उदाहरण नहीं है, लेकिन अमेरिका में पहली बार राधा कृष्ण राधा दामोदर में के रूप में संकीर्तन पार्टी, फिर राधा उस पर उसके बाद पूरा एक अपने परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने तो राधा दामोदर संकीर्तन पार्टी बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बना दी, उसका नाम ही राधा दामोदर पार्टी था, उस वक्त में उनका स्कोर दुनिया का बड़े से बड़ा स्कोर था, लाखों की संख्या में पुस्तकों का वितरण करते थे, बस चलती थी, बसें चलती थी, बस ने यहाँ भी कई 10-20 मर्सिडीज बसें लेके आए थे, और घर यूनिवर्सिटी में हल कॉलेज तक जाके एक एक किताब रखने का, प्रभुपाद के बुकों का ऑर्डर होता था कि पूरा सेट चाहिए और अभी तक किताब है नहीं, बड़ा परिश्रम चला। तो राधा दामोदर संकीर्तन के ठाकुर है, वह बात ये कर रहा था, वो जिसके पास वो ठाकुर जी आए थे श्री विग्रह बना, मेरे ख्याल में काशी बनारस से आए थे, तो जिस प्रेसिडेंट मंदिर के थे वो तो बस में ले गए, वो बोला मेरे विग्रह वापस दो, मैंने इसका इतना खर्च किया। विष्णु महाराज कहते भगवान की कोई कीमत होती है क्या? पैसों से थोड़ी भगवान खरीद जाते, अपनी इच्छा से या खुश बैठे तो आपको वापस क्यों दे? भाई भगवान के कोई मूर्ति का पैसा तो नहीं हो सकता ना, भगवान पैसे का कोई खरीद सकता है क्या? वो तो भगवान की रानियों ने नारद को कृष्ण को दे दिया था वापस लेने के लिए, सारे 16108 का सोना रख दिया, आभूषण रख दिए, तो भी कृष्ण तो भारी पड़ गए। वो तो केवल तुलसी दल से ही जीत खरीदे जा सकते हैं, कोई धन से नहीं खरीदे जा सकते, प्रेम से खरीदे जा सकते। नहीं दिए वापस, प्रभुपाद ने उनको दूसरी और विग्रह दिए, उन्होंने नहीं दिए। बोले ऐसे न भगवान को पैसे से खरीदा जा सकता है, न भगवान की वाणी भगवत गीता को पैसे से कोई खरीद सकता है। कितना भी पैसा दे, ये भगवान की वाणी मिल नहीं सकती है। पता नहीं भारतवासियों को कलयुग ने कैसे डस लिया है, नहीं तो इसको लेने के लिए लोगों की लाइन लगनी चाहिए, जैसे जियो लेने के लिए खड़े होते हैं। अरे उससे तो आदमी मरता है, वो जियो असल में जियो ये है जो जिलाने वाला है और मृत्यु से मुक्त करने वाला है, उसको लेने के लिए लोगों की लाइन। आइए फ्री ले जाइए, जो चाहिए वो दे जाइए। अभी भी पैसा तो ले ही रहा है वो, जैसे मुफ्त में तो कुछ नहीं दिया, टोपी पहना दी और कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कब लोगों के अंदर धारणा भावना आएगी, ये तो जागृति करना भी हमारा काम है कि लोगों को लगे कि हमारे पास क्यों नहीं है अभी तक। जैसे लोगों को ये मन में आता है कि मेरे पास भाई आईफोन 8 है तो सबको ये मेरे पास होना चाहिए, ऐसे भगवद गीता यथारूप मेरे पास नए साल का क्यों नहीं कापी आई, आनी चाहिए। दो दो मोबाइल भी लोग रख के, तीन तीन लोग उठा के रखते हैं, तो एक के बजाय से 10-20 हो तो भी कोई कम है, कम नहीं है वितरण करने के लिए। सो भगवान कहते हैं कि उससे ज्यादा मुझे कोई और प्रिय नहीं है। फिर कहते हैं भविता और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा, भविता न चमे तस्माद, उससे ज्यादा भविष्य में भी कोई प्रिय नहीं होगा। ये काम करने वाले से प्रिय कोई और भविष्य में भी नहीं हो सकता है, अन्य प्रियत्रो भवि, और कोई रास्ता नहीं है मुझे मेरे प्रेम को प्राप्त करने का। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो इस श्लोक का तात्पर्य प्रभुपाद जी ने लिखा ही नहीं है, बोले इसका तात्पर्य जब कोई वितरण करेगा तभी उसको अनुभव होगा जीवन में, लिखना का नहीं है ये अनुभव करने का। और आप जब किसी को एक पुस्तक देते हैं और कोई लेता है तो आपको जो सुख मिलता है वो असल में ऐसे है कि कृष्ण की प्रसन्नता का प्रतीक है। और आप उठा के जाते हैं 20 भगवद गीता, एक एक जाती है आपका भार कम होता है, ऐसे समझो कि आपके कर्मों का भार भी कटता जाता है और कई जन्मों के कर्मों का जो लेखा चोखा है वो समाप्त होता जा रहा है, और कैसे हल्के होके वापस आ जाते हो घर में, ऐसे सब कुछ अपना एकदम हल्का हो जाता है। विष्णु प्रभु मिले थे कि अभी हमारे वितरण का तो ऐसे है, हम कहते हैं आपको ये गीता लेनी है, हमको तो इसका कोई कीमत नहीं है, आपको जो चाहे वो दो, नहीं दे तो नहीं दो, लेकिन लेनी है आपको ये, तो हम ना नहीं कर सकते। तो उन लोगों के अंदर एक धारणा पैदा करनी है कि ये हमको लेनी है। वो संभव है कोई आदमी 50 दे के, 20 दे के, 10 दे, लेकिन एक 500 भी देगा, एक 1000 भी, 2000 भी देगा। पहले 1000 था तो देते, अभी 2000 देने में थोड़ा सा उनको थोड़ा सा संकट होगा, थोड़ा सा परेशानी। अच्छा है 200 को तो कम से कम निकला है, वो भी अभी मार्केट में आया नहीं है। 500 वाला तो चलेगा, 500 कम है ना, 1000 वाला तो देना तो आसान था। नहीं भी दे कोई बात नहीं, एक ले जाएगा, 10 ले जाएंगे तो 11 आएगा, 10 का पैसा दे जाएगा, क्योंकि भगवान सबके हृदय में परमात्मा बैठे हैं। बोला अब वो इतने इसको तो मैंने दिलवा दिया, इनकी जरूरत ही अब इसके पास ज्यादा है, ये सबका दे के जाएगा आपको, तो आप इसकी चिंता मत करो, आप लोगों के हाथ में देते जाओ, धरते जाओ। एक दृष्टि से प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो भाई अमृत हम उनको दे रहे हैं, जीने के लिए जियो दे रहे हैं, जियो गीता योजना। ले जाओ अपने घर में, 3 महीने पढ़ो, उसके बाद आपको रेगुलर बेस पे 100 रुपया मंदिर भेजना पड़ेगा। आजीवन, और ये आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। अरे कृष्ण। सो इसमें चाहिए असल में उत्साह और लगन, लेकिन वो तब होती है जब हमको मालूम है कि इसमें हमारा को लाभ क्या हो रहा है। बगैर लाभ के कोई काम नहीं हो रहा है, तो लाभ इससे हमारा ये हो रहा है कि भगवान को और भगवान के भक्तों को प्रिय होने का ये सबसे उत्तम सरल और श्रेष्ठ साधन है। नहीं तो हम भगवान को क्या देके कुछ कर सकते, वो सब चीज़ का मालिक है। क्या उसको सोना देके भी कुछ नहीं कर सकते, हीरा मोती देके भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पुस्तक वितरण करके उसको कुछ कर सकते। ऐसे गुरुजनों को भी क्या देके हम उसका ऋण उतार सकते हैं, कुछ भी नहीं। लेकिन ये कार्य करने से प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे, राजा को आप क्या गिफ्ट दोगे, खुश हो जाएगा। लेकिन राजा के बेटे को टॉफी देने से भी राजा खुश हो जाता है। राजा को तो कुछ भी देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राजा के बेटे को छोटा खिलौना दो तो भी राजा खुश हो जाता है। ऐसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो क्या दे सकते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए पुस्तक वितरण करेंगे तो भगवान की प्रसन्नता और भगवान के भक्तों की प्रसन्नता बहुत अति शीघ्रता और तत्काल तुरंत हो जाएगी। लेकिन उसके लिए संकल्प दृढ़ होना चाहिए, अंदर में बैठा है भगवान परमात्मा के रूप में, और अकेला भगवान नहीं है। आप अगर कभी ठीक तरह पढ़ा होगा भक्ति रसामृत सिंधु, तो उसमें कृष्ण शब्द जहां है वहां लिखे कृष्ण अकेले नहीं, कृष्ण का अर्थ है कृष्ण, कृष्ण के सारे अवतार, कृष्ण के सारे भक्त, वो सब कृष्ण में आ जाते हैं। वो कृष्ण अकेले नहीं, कृष्ण में सब समाया हुआ है। तो सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हैं। आपके हृदय में जैसे समझेंगे इसका दृढ़ संकल्प है कि 10,000 करनी है कि 5,000 करनी है, तो अब 5,000 लोगों में के हृदय में बैठा हुआ भगवान उनको कहेगा जाओ इधर से लेके आओ, काम भगवान करेगा। संकल्प आपको करना है, असल मैकेनिज्म यही है। आपने हृदय में संकल्प किया, भगवान ने देख लिया कि ये बाकी काम करना चाहता है, पक्का है, तो सबके हृदय में बैठे हुए भगवान उनको कहेंगे ये आएगा इससे ये ले लेना, ये आएगा इससे लेना। वो अंदर बैठा है ना उधर, उसको वहां से प्रेरणा देगा। आपका संकल्प जितना पक्का होगा उतने लोगों को भगवान प्रेरणा देगा, उतनों का भगवान उद्धार कर देगा। तो असल में आपको केवल संकल्प करना है अपने मन से कि इस बार मुझे इस प्रभुपाद जी के प्रसन्नता के नवंबर दिसंबर के भगवत गीता वितरण के गीता जयंती के कार्य में कृष्ण भगवान की प्रसन्नता, गुरुजनों की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इतना मेरे को प्रयास करना है, दिन रात प्रयास करना है, और यहाँ तक मेरे को करना है। तो फिर आप देखिए कि भगवान आपके सीमित समय से पहले वो पूरा कर देंगे। हमें कई भक्तों की कथाएं ऐसे सुनी हैं, एक जाके प्रयास करते थे, एक बेचारा सोया हुआ था, उठ के जाता था, तब कोई एक आता था, बोला ये कहाँ इतना भार उठा के महाराज जा रहे हो, बोला बस इस वितरण करने वाला यही दे दो, कितने की है ले जाओ, तो वो तो वहां से वापस आ जाता था। उसका संकल्प है इतना करना है तो कोई ना कोई आए के ले जाएगा। तो प्रयास, और आपका ये अच्छा है कि एक एक आदमी को एक देने वाला काम ये बहुत बड़ा है, और जो ले जाएगा वो निश्चित रूप से उसके परिवार का भला करेगा। सो प्रभुपाद जी कहते ये तो अमृत है, गीता अमृत है, हम उनको अमृत दे रहे हैं, अमृत जगत में अमृत देना है। और प्रभुपाद जी दूसरा कहते हैं कि ये आइटम बम का काम करेगा, उनकी माया का सारे पर्दे चाक करके उनके हृदय के अंदर भगवत प्रेम को जागृत करने का कार्य करेगा। तो दोनों तरफ से ये काम करेगा, उनका उनका भला करेगा, और उनके भले की कमीशन आपको मिलेगी मुफ्त में, कि भगवान का प्रेम आपको मिलता जाएगा। तो ये इस कार्य को बात फिर मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त, प्रेम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को पक्का करते जाए, रोज इसको एक बार नहीं 10 बार दोहराइए, मैं इस जगत में आया हूँ कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करने के लिए, और वो कृष्ण के भक्तों की कृपा से मिलेगा, और कृष्ण के भक्तों की कृपा के लिए मुझे सेवा के कार्य में लगना चाहिए। और इस वक्त हमारे को ये सौभाग्य से, जैसे श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, क्षत्रिय को सौभाग्य से युद्ध का मौका मिलता है, ब्राह्मण को भाग्य से यज्ञ करने का मौका मिलता है, ऐसे वैश्य को भाग्य से भगवान के कार्य का, ये महान यज्ञ है असल में, ये गीता मैराथन बहुत बड़ा यज्ञ है। और इस यज्ञ को ऋषि यज्ञ बोलते, आपको मालूम है हर गृहस्थ के घर में 5 हत्याएं रोज जाने अनजाने में होती, उसको बोलते हैं 5 सोना। सोना का मतलब हत्या, मुर्दा, मरा हुआ। झाड़ू निकालते हुए कितने कीट पतंग मरते हैं, पानी भरते हुए, आग जलाते हुए, धान में से तो हम चुन चुन के बाहर फेंकते हैं कि नहीं। तो ये 5 प्रकार की हत्याएं हर गृहस्थी के घर में निरंतर होती हैं, इसलिए पांच यज्ञों का विधान है वेद ने किया। एक यज्ञ का नाम है अतिथि यज्ञ, कोई मेहमान घर में आए जल पिलाना भोजन कराना, यह अतिथि यज्ञ कहलाता है। दूसरा है भूत यज्ञ, चूंटी को पानी दाना देना, पक्षी को पानी देना दाना देना। पुराने जमाने के हर स्त्री घर में कुत्ते की रोटी, गाय की रोटी, चूंटी के दाने, मकोड़ी के दाने, पक्षी के दाना, पानी, ये सब भारत की संस्कृति में इसको भूत यज्ञ कहते हैं। इन सब का देने का अभी तक भी, वैसे तो कई बार हमने कहा है कि कोई गृहस्थी के घर में पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। अब तो न गाय हाथ दिखने में लग, गाय की रोटी है न कुत्ते की रोटी है, कहाँ जाती है दोनों, पहली और आखिरी, इसका समाचार कोई बताओ कहाँ जाती है पहली? बड़े प्रेम से किसको खिलाते हैं? तो गाय की तरह चुप करके बैठा रहे। अरे भाई एक दिन में नहीं जा सकते हो तो गौशाला में भेज दिया करो, यहाँ से रोज गाड़ी आती है। एक जगह मैंने देखी है गौशाला वाले साइकिल के ऊपर सब घरों में भेजते हैं कि भाई बची हुई रोटियां दे दो गाय के अंदर को, गाय की रोटी तो लोग बना के रखते हैं अपने आप, तो किसी तरीके। और कुत्ते की रोटी, भाई कुत्ते को रोटी देनी है, कोई भी पक्षी को देनी है, दूसरा यज्ञ। तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ, हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग जिन्होंने घर बना के दिया, दुकान मकान बना के दिया, उनकी स्मृति में कोई धर्म के कार्य करते रहना चाहिए। जैसे पुस्तक वितरण करने कोई कहता भाई 100 गीताएं मैं पिताजी के निमित्त में करता हूं, तो ये चौथे यज्ञ का नाम है पितृ ऋषि यज्ञ। वो ये ऋषि ऋण कहला, ये बड़ा यज्ञ है, उसमें शास्त्र जो ऋषियों ने दिया है उस शास्त्र का पढ़ना और शास्त्र को पढ़ने के लिए प्रेरणा देना, तो ये गीता वितरण ऋषि यज्ञ है। इसका मतलब ऋषियों का ऋण उतारना है, ये यज्ञ करना है। आप किसी को देते हैं इसका मतलब वो पढ़ेगा तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएगा, नहीं तो उसके एक हत्या का भार उसके ऊपर सदा रहेगा। और पांचवें यज्ञ को बोलते हैं देव यज्ञ, मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना, घर में मंदिर बना के रखना, ये देव यज्ञ कहलाता है। तो अभी तक देव यज्ञ करने का तो हमने घरों में मंदिर बनाए प्रभुपाद की कृपा से, पितृ यज्ञ अपने माता पिता की सेवा करने का, तो जीते जी वाला का सेवा करना चाहिए, बुजुर्गों के निमित्त में कुछ सेवा का कार्य करते ही रहना चाहिए। अतिथि यज्ञ, ये सत्संग अतिथि यज्ञ का एक दूसरा नमूना है, 10-20-50-100 आदमी कीर्तन में आते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, ये अतिथि यज्ञ अपने आप में हो जाता है, ये अपने आप में इस अपने घर में हो गया, उसके घर में इतने अतिथि आ गए, भाई महीने में 30 अतिथि आ गए, एक बार कथा किया घर में तो अतिथि यज्ञ तो हो गया। अब रह गया ऋषि यज्ञ, तो प्रभुपाद जी ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने हमारे को ये पुस्तक उन भाषाओं में दी हैं जो भाषाएं हम पढ़ सकते, नहीं तो संस्कृत भाषा में पहले थे लेकिन हम उसका लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो आप इस यज्ञ को पूरा करने के लिए आप आवाहन कीजिए। बात में ये कह रहा था, भगवान कहते हैं क्षत्रिय के लिए युद्ध भाग्य से मिलता है, ऐसे ये महीना हमारे को ऋषि यज्ञ, ऋषि ऋण उतार के ऋषि यज्ञ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और जो भाग्यशाली होता है सब कामों को पीछे रख के इस यज्ञ को एकदम पूरा करने का प्रयास करता है। तो आप इस यज्ञ के ऋषि यज्ञ में भाग ले रहे हैं, ये बड़ा संकीर्तन यज्ञ है और ऋषि यज्ञ ऋण से मुक्त होने वाला ऋषि यज्ञ है, तो इसका इस कार्य को आप सफलतापूर्वक करें ऐसी कामना करते हैं। भगवान श्री राधा गोविंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं, गौर निताय की शक्ति का संचार हो और मर्यादा में सीताराम लक्ष्मण की कृपा से रहकर ये कार्य आप संपन्न करें और गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्ण, धन्यवाद। जाओ अपने घर, पुस्तक वितरण करने हैं, बस ये ध्यान रखना और बहुत